तारीख 24 मई दिन रविवार। नमस्कार भारत में स्वागत है आपका, मैं हूं अनुराग शर्मा। आयरलैंड में ऐतिहासिक जनमत संग्रह में समलैंगिक विवाहों को मंजूरी, वोटिंग के आधार पर वैधता देने वाला पहला देश बना आयरलैंड।
With today's vote, we have disclosed who we are. A generous, compassionate...
राजस्थान में आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे गुर्जर नेताओं और सरकार में बातचीत नाकाम, आखिर कहां बिगड़ी बात?
आए थे वो, हमें ऐसा लगा कि ये बयाना में पिकनिक बनाने आए हैं, उनके पास कोई प्रस्ताव का कोई कंक्रीट कोई प्रस्ताव नहीं था।
साथ में बात आज होने वाले आईपीएल फाइनल की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। यूरोपीय देश आयरलैंड में जन्म संग्रह में हिस्सा लेने वाले 62% से अधिक लोगों ने देश के संविधान में बदलाव करके समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने के पक्ष में वोट दिया है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है, लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले डॉक्टर जॉन मर्रे ने कहा है कि कैथोलिक चर्च को इस अनुभव से सबक लेने की जरूरत है।
I do think that there is a problem that is highlighted by the vote, which has been ongoing.
मुझे लगता है कि ये एक समस्या है जो मतदान के जरिए उजागर हुई है, जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, जो आयरलैंड और अन्य जगहों पर भी है। वो ये कि चर्च विवाह, यौन संबंध और परिवार जैसे विषयों पर लोगों को ठीक से सिखाने में नाकाम रहे हैं। जनमत संग्रह का नतीजा उसी की परिणति है। कैथोलिक समूह के प्रवक्ता डॉक्टर जॉन मर्रे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में कार के बोनट पर चढ़कर निहत्थे काले लोगों पर गोली चलाने वाले गोरे पुलिस वाले को अदालत ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। ये मामला वर्ष 2012 का है, जब टिमोथी रसेल और मेलिसा विलियम्स पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। इस मामले में सिर्फ एक पुलिस वाले माइकल ब्रेलो को अभियुक्त बनाया गया था, जिन्हें अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अमरीका में पुलिस के हाथों काले लोगों के मारे जाने के कई मामले सामने आए हैं, जिनकी वजह से देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस विवादास्पद विधेयक पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें रूसी अधिकारियों को देश के भीतर संचालित विदेशी संगठनों को काम करने से रोकने और उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही रूस के वरिष्ठ विधि अधिकारी को यदि लगता है कि कोई विदेशी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन रूसी संवैधानिक व्यवस्था की बुनियाद के लिए खतरा बन रहा है, तो वे उस संगठन को अवांछित घोषित कर सकेंगे। इन संगठनों के खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी जा सकती है और उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। आलोचकों ने इसे पुतिन के विरोधियों का मुंह बंद करने का एक और तरीका बताया है। रूस से ही खबरें मिल रही हैं कि पूर्वी यूक्रेन में पृथकतावादियों के एक मुख्य कमांडर अलेक्जेई मोजगोवई की हत्या कर दी गई है। उन्हें लुहांस्क में अन्य विद्रोही नेताओं के आलोचक के तौर पर देखा जाता था। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा संघर्ष विराम का भी विरोध किया था। इराक में अधिकारियों का कहना है कि लगभग 3,000 इराकी लड़ाके इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से निपटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इराक के रमादी शहर पर इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने कब्जा कर रखा है। इराकी लड़ाके रमादी पर दोबारा नियंत्रण नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने रमादी के नजदीक एक अन्य शहर को चरमपंथियों से छुड़ा लिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं अनुराग शर्मा। राजस्थान में आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बातचीत नाकाम हो गई है। इस खबर के बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले बात आयरलैंड की। आयरलैंड में हुए ऐतिहासिक जनमत संग्रह में भारी अंतर से समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिल गई है। प्रस्ताव के पक्ष में 62% लोगों ने वोट डाले। आयरलैंड में 22 साल पहले समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। ज्यादा ब्यौरे के साथ संदीप सोनी।
आयरलैंड की राजधानी डबलिन में जश्न मनाते ये वो लोग हैं जिन्हें पूरा भरोसा था फैसला उनके पक्ष में होगा। ऐसा हुआ भी।
Votes in favor of the proposal 1,201,607.
नतीजों की घोषणा करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर कह रहे थे कि 10 लाख से अधिक लोगों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 7,000 से कुछ अधिक लोगों ने इसके विरोध में वोट दिया, यानी बहुमत समलैंगिक विवाह के पक्ष में है। आयरलैंड के लगभग 32 लाख लोगों से पूछा गया था कि क्या वे समलैंगिक विवाह के लिए देश के संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। जनमत संग्रह में हिस्सा लेने वाले 62% से अधिक लोगों ने हाँ में अपना जवाब दिया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री एंडा केनी ने जनमत संग्रह के नतीजे का स्वागत किया है।
The privacy of the ballot box, the people made a public statement. With today's vote, we have disclosed who we are.
प्रधानमंत्री एंडा केनी कह रहे थे कि लोगों ने वोट के जरिए अपनी बात कही है और इसके साथ ही ये जाहिर हो गया कि हम कौन लोग हैं। हम उदार, दयालु, निर्भीक और मस्त रहने वाले लोग हैं। आयरलैंड एक गणराज्य है और इसका संविधान बाकायदा लिखा गया है। इस संविधान में जनमत संग्रह के जरिए ही किसी तरह का बदलाव किया जा सकता है। जनमत संग्रह में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलने के साथ ही आयरलैंड में अब समलैंगिक वैवाहिक जोड़ों को संविधान के हिसाब से वही दर्जा मिलेगा जो स्त्री और पुरुष की शादी के बाद मिलता है, यानी समलैंगिक जोड़े को परिवार की तरह मान्यता मिलेगी और संविधान के तहत हर तरह की सुरक्षा हासिल होगी। आयरलैंड यूरोप का एक देश है जो अटलांटिक महासागर के किनारे बसा है। ये आकार में भारत के बिहार राज्य से थोड़ा छोटा है। 1980 के दशक तक ये देश मोटे तौर पर खेती पर निर्भर था, जहां बेरोजगारी चरम पर थी, लेकिन आर्थिक नीतियों में बदलाव के बाद आज आयरलैंड की गिनती बेहतर अर्थव्यवस्था वाले देशों में होती है।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
और अब रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर रेल की पटरियों पर आंदोलन कर रहे गुर्जर समुदाय से सरकार की बातचीत नाकाम हो गई है। गुर्जर नेताओं ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। बातचीत विफल क्यों रही, यही सवाल पूछा गुर्जर समुदाय के नेता हिम्मत सिंह से हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने।
देखिये, सरकार ने हमें प्रस्ताव दिया था वार्ता का, हमने स्वीकार किया प्रस्ताव, लेकिन सरकार की तरफ से जो 3 मंत्री आए थे वो हमें ऐसा लगा कि ये बयाना में पिकनिक बनाने आए हैं। उनके पास कोई प्रस्ताव का, कोई कंक्रीट कोई प्रस्ताव नहीं था। एक लाइन का ये भी नहीं था उनके पास कि रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा। हम उस वार्ता को बीच में छोड़ के आ गए। हमने वो वार्ता विफल हो गई क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था हमारी बातों का।
कौन कौन से मंत्री आए हुए थे और आपकी उन मंत्रियों से क्या शिकायत रही?
देखिए, राजेंद्र जी राठौड़ आए थे, हेम सिंह भराना जी आए थे, अरुण चतुर्वेदी जी आए थे, जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई है वो लोग डेप्यूट हुए थे। लेकिन हमारी बात ये हुई, उन्होंने ये कहा कि हम अटॉर्नी जनरल को बुला के आपको 3 महीने में रिजर्वेशन दिला देंगे। तो आप ये देखिए, कोर्ट में जब मैटर चल रहा है उसको 3 महीने में ये कैसे कह सकते हैं कि 3 महीने में दिला देंगे। दूसरी बात, जो 50% के अंदर हमें रिजर्वेशन चाहिए उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। भाई, आप 3 दिन हो गए, राजस्थान का इतना बड़ा रेलवे ट्रैक जाम है, हजारों लोग रेलवे ट्रैक पे पड़े हुए हैं भूख प्यास से इतनी गर्मी में, उसके बावजूद उनको इतना से तरस नहीं आई कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए।
वार्ता विफल होने के बाद आपको सरकार की तरफ से और कोई आश्वासन मिला है?
जब वार्ता विफल हुई उसके बाद राजेंद्र जी ने बीच में रोकने का प्रयास किया हमें कि आप लोग, हम कल बैठते हैं, परसों की कहा कि हम मंडे को करते हैं। हमने कहा साहब, आपके पास कल का टाइम है, आप इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से ले नहीं रहे, इसका मतलब नहीं, कल की छुट्टी अधिकारियों की। आप देखिए, ये मिसबिहेव इन मंत्रियों को रहा है कि कल पिकनिक मनाएंगे, कल ये संडे मनाएंगे और लोग, हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। इनके बारे में राजस्थान के लोगों की कोई चिंता नहीं है कि ये परसों बात करेंगे हमसे।
लेकिन ये जानकारी मिल रही थी कि लगातार आंदोलन चलने से आपके कार्यकर्ताओं में भी एक निराशा का भाव है और भीड़ जुटाने में भी आपको दिक्कत हो रही है।
देखिए, हमारी भीड़ जुटाने में कोई दिक्कत नहीं है, आज हमारी भीड़ ज्यादा बड़ी है और जगह हमें आंदोलन में सपोर्ट मिल रहे हैं। मेरठ में रेल रोकी गई, कल कोटपुतली में दूध बंद कर दिया गया, कि इस तरीके से यदि सरकार करती रही तो हमारे लोगों में आक्रोश की भावना बढ़ेगी। ये गलत है कि ये हमारे लोग मतलब निराश हैं, निराश नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ आक्रोश जरूर है।
ये थे गुर्जर नेता हिम्मत सिंह, जो राजस्थान सरकार से जिनके तेवर काफी नाराजगी वाले दिखाई दे रहे थे। जहां गुर्जर नेता आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं, वहीं गुरुवार से चल रहे इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर पड़ा है दिल्ली मुंबई रेल रूट पर, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब गुर्जर समुदाय ने रेल की पटरियों पर कब्जा करके रेल यातायात रोका हो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से हमारे सहयोगी नारायण बायरेट भी, ताजा जानकारी के लिए उनसे बात करते हैं। नारायण बायरेट जी, बातचीत तो विफल हो गई, राजस्थान सरकार की अब क्या रणनीति है?
सरकार कहीं कहीं ये भी आकलन कर रही है कि क्या गुर्जर नेता बैसला को उतनी हिमायत हासिल है जो पहले थी, और सरकार ये कह रही है कि सोमवार यानी कल से फिर बातचीत हो सकती है। इस दौरान इसका प्रभाव बाकी जाति समूह पर पड़ा है। जाट समुदाय ने इस पे नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि अगर आरक्षण में कोई भी कतरजोत की गई तो वो सड़कों पे आ जाएंगे। पिछली बार मीणा समुदाय आशंकित था कि कहीं उनका हिस्सा गुर्जरों को नहीं दिया जाए, और इस बार जाट समुदाय ने इसकी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो इससे लगता है कि वापस जाति द्वेष जैसा माहौल बनने लगा है। हालांकि सरकार अब भी आश्वस्त है कि सोमवार को फिर बातचीत की टेबल पर बैठेंगे और कोई समाधान निकलेगा, और इस दौरान कम से कम देश के 5 रेलवे जोन ऐसे हैं जहां सैकड़ों गाड़ियां प्रभावित हुई है। ये गर्मी में शादी विवाह का मौसम भी है और लोग बहुत इससे व्यथित है।
नारायण जी, क्या पटरियां खाली करने या कराने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि आपने कल ये कहा था कि सरकार ने कुछ अतिरिक्त कंपनियां मांगी है केंद्र से?
सरकार ने वाकई केंद्र से कुछ सहायता मांगी है। इसका दबाव अहमदाबाद दिल्ली रूट पे पड़ा है क्योंकि डाइवर्ट उधर किया गया है, और वैकल्पिक तौर पे सरकार ने कुछ प्रयास किया है कि सुरक्षा प्रबंध ऐसे व्यापक किए जाए कि कल अगर ये आंदोलन विस्तार लेता है तो इससे निपटने के लिए कुछ तैयारी की जा सके। अब जो हमें सूचनाएं मिल रही है कि अगर गुर्जर ज्यादा आक्रोशित हुए तो वो सड़क मार्ग पे व्यवधान पैदा कर सकते हैं।
जी, नारायण बायरेट जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। जबरदस्त बहुमत के साथ जीत कराए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और विपक्ष बौखला गया है। वहीं भाजपा और कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने विकास का एक भी काम नहीं किया और वो अंदरूनी और बाहरी विवादों में उलझी हुई है। सुनिए संदीप राय की रिपोर्ट।
5 साल के लिए चुनी गई सरकार के आकलन के लिए 100 दिन का वक्त काफी नहीं होता, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार खुद अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुटी है। सोमवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में जन संवाद के जरिए सरकार जनता को अपनी उपलब्धियां बताएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी सरकार को अच्छे काम का सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उस वजह से ये लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं।
बीते 14 फरवरी को बनी दिल्ली सरकार ने शुरुआत अच्छी की थी, पानी और बिजली को लेकर किए वादे पूरे किए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विवाद साथ जुड़ने लगे। केजरीवाल इसके लिए विपक्ष की भूमिका को जिम्मेदार बताते हैं, तो विरोधी दलों की नजर में उनकी सरकार पूरी तरह फेल है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि केजरीवाल सरकार सारे वादे भुला चुकी है। वो कहते हैं कि जन लोकपाल के मुद्दे पर 49 दिन में इस्तीफा देने वाले केजरीवाल ने 100 दिन में एक बार भी लोकपाल की बात नहीं की।
ये मैं 100 डेज ऑफ एनआरकी मानता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ कंट्रोवर्सी और एनआरकी ये हमने देखी। अगर हम डे 1 से शुरू करें, कंट्रोवर्सी विद इन दी पार्टी, फिर कंट्रोवर्सी विद अपोजिशन, फिर मीडिया के साथ कंट्रोवर्सी की, ऑफिसर्स के साथ कंट्रोवर्सीज की जा रही है, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कंट्रोवर्सी हुई, सेंटर के साथ लगातार डे 1 से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। डेवलपमेंट का एक भी काम पिछले 100 दिन में इस गवर्नमेंट ने इनिशिएट नहीं।
उधर कांग्रेस भी दिल्ली सरकार के 100 दिन के कामकाज की आलोचना में जुटी है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दिल्ली सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया है।
अब पता नहीं वो 125 दिन भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से श्री केजरीवाल को रोज सुबह एक नया आदमी चाहिए होता लड़ने के लिए, तो ये सरकार लड़ने के ज्यादा मूड में दिखती है, ना कि सरकार चलाने के।
विपक्ष की नजर में दिल्ली सरकार के 100 दिन सिर्फ नाकामी की कहानी सुनाते हैं। हालांकि केजरीवाल सरकार को विरोधियों की आलोचना की चिंता नहीं है, उनकी सरकार 100 दिन की कामयाबी का ब्यौरा जनसंवाद के जरिए पेश करने की तैयारी में है। संदीप राय, बीबीसी दिल्ली।
केंद्र, पुलिस और मीडिया, झगड़े और नाकामी के 100 दिन या कामकाज और अच्छे प्रशासन का शतक। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता से बात की और उनसे पूछा कि वो केजरीवाल की दूसरी सरकार के अब तक के कामकाज को किस तरह देखते हैं।
देखिए, 100 दिन बहुत जल्दी होते हैं किसी भी सरकार के लिए और मैं समझता हूँ कि उन्हें और अभी इंतजार करना चाहिए। और जैसे वो 5 साल के लिए चुन करके आए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो बहुत जल्दबाजी में हमेशा रहे हैं और सत्ता आने के साथ सारे व्यापक परिवर्तन एक साथ नहीं होते। जनता के बीच में मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई मोह भंग हुआ है, लेकिन प्रशासन की दृष्टि से मुझे लगता है कि सीधे टकराव लेने की अभी जल्दी नहीं थी। वो एक तालमेल के साथ यदि काम करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता, और इसलिए मैं मानता हूँ कि वो बहुत शीघ्रता में सत्ता के शिखर की सफलताएं और दावा भी जो कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार 70% दूर हो गया, ये मतलब बहुत ही हास्यास्पद सा लगता है। वो दावे मतलब नई सरकार का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने अपने ढंग से प्रशासनिक फेरबदल भी जो करना चाहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सीधे एक यूनियन नेता जैसे होता है वैसा व्यवहार मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए।
ये दिल्ली सरकार का दावा है, 100 दिन के अंदर उन्होंने जो काम कर दिखाया है वो नरेंद्र मोदी सरकार 1 साल में नहीं कर पाई है।
मैं मानता हूं कि मोदी सरकार के 1 साल से उनको तुलना इसलिए नहीं करना चाहिए कि मोदी सरकार के सामने भी पूरा देश है। 100 दिन में सफलता विफलता देखना और ठीक भी नहीं है ना उचित है। जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, जिस तरह से वो राजनीति में आए हैं गांधी का नाम लेके या अन्ना हजारे जी का नाम लेके, उसमें कोई चमत्कार की अपेक्षा करना वो उसी तरह से होगा जैसे अंधविश्वास से आदमी कहता है कि आपका इलाज, बाबा रामदेव कहते हैं कि कैंसर और हृदय रोग का इलाज हो जाएगा, ये उसी तरह के दावे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो तुलना करना उनको शोभा नहीं देता एक अच्छे नेता के रूप में यदि वो बनना चाहते हैं।
वहीं नरेंद्र मोदी सरकार भी अपना 1 साल पूरा करने वाली है। सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी ने जिन योजनाओं पर जोर दिया था उनमें एक थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, यानी हर सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसके विकास पर ध्यान देगा। खुद प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम योजना के तहत वाराणसी के एक गांव को गोद लिया है। जयपुरा नाम के इस गांव में हालात वाकई तेजी से बदले हैं। 3 बैंक, बढ़िया सड़क, पोस्ट ऑफिस, बायो टॉयलेट, बस स्टैंड और भी बहुत कुछ। खास बात यह कि हर चीज पर गुजरात की छाप दिखती है। हालांकि जयापुरा के कुछ लोग उदास भी हैं। उनकी उदासी की वजह क्या है, सुनिए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नितिन श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट।
गेहूं और सब्जी की लोकप्रिय बाजार राजा तालाब इलाके को बनारस के बाहर का हर शख्स जानता है, क्योंकि इन दिनों इस विशालकाय तालाब को पार करने के पहले ही सड़क के दोनों ओर कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड और केक वगैरह की दुकानें दिखने लगती हैं। आपको बस गाड़ी रोककर किसी से पूछना भर है, अगला आपकी बात काटकर बोल पड़ेगा, मोदी का गांव आगे से दाईं ओर को पड़ता है। स्वागत है आपका भी इन दिनों भारत के सबसे वीवीआईपी कहे जाने वाले गांव जयपुर में। पिछले वर्ष नवंबर में नरेंद्र मोदी ने इस गांव को अपने संसदीय क्षेत्र के तहत चुना था। आज यहां की तस्वीर बदली हुई दिखती है। जयपुर ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि नारायण पटेल काफी व्यस्त दिखे, क्योंकि उनकी एक बड़ी सी एसयूवी गाड़ी में गुजरात और राजस्थान से आए कुछ उद्योगपति गांव का जायजा ले रहे थे।
सड़क, पानी और बिजली की ये व्यवस्था हो जाने के बाद यहां पर छोटे छोटे उद्योग जैसे घरेलू टाइप के 10 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, हैंडीक्राफ्ट है या और सारी व्यवस्थाएँ, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, पापड़ बनाना, इस ढंग की छोटी छोटी लघु इकाइयाँ यहाँ उन लोगों के लिए सुलभ की जाएगी।
क्योंकि अभी लोगों में थोड़ा सा रोष इस बात को लेके कि उनका उनको रोजगार नहीं मिला,
ये होगा अभी तो कितना दिन हुआ, नवंबर बीते 6-7 महीने हुआ।
जयपुर में करीब 600 परिवारों के लिए 3 सरकारी बैंक शाखाएं, एक नया पोस्ट ऑफिस, सड़कों पर 135 सोलर लाइटें और दर्जनों बायो टॉयलेट स्थापित हो चुके हैं। हैरानी की बात यह भी लगी कि गांव के विकास में जुटी हर ट्रक या ट्रैक्टर की नंबर प्लेट गुजरात राज्य की थी। एक बड़े मैदान में विशालकाय सीमेंट से त्रिकोणीय ईंट बनाने की मशीन से सैकड़ों नई ईंटें सांचे में ढाली जा रही थीं। बगल खड़े ठेकेदार गुजरात के हैं और पिछले 42 दिनों से यहीं डेरा डाले हुए हैं।
जी साहब, मैं गुजरात से हूँ और गुजरात से सूरत से हूँ। मेरा नाम है मनोज अंटाला। हाँ, और मैं यहाँ ये मतलब रोड बनाने का काम कर रहा हूँ, इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक।
ये पूरा प्लांट गुजरात से यहाँ पर है?
हाँ, पूरा गुजरात से है।
तो क्या यूपी में ये चीजें नहीं अवेलेबल है या क्या, क्यों आया?
अवेलेबल है लेकिन मतलब कम मिलता है ना, जितना हमको टूक समय में ये काम करना है, शॉर्ट समय में काम करना है, उसके लिए अवेलेबल नहीं है, इतना ज्यादा सामान अवेलेबल नहीं है। बस
दूसरों से बात करने पर पता चला कि जयपुर में विकास के सभी कार्य नवसारी गुजरात के सांसद सीआर पाटिल की देखरेख में हो रहे हैं, लेकिन जयपुर के कुछ निवासी ऐसे भी हैं जिन्हें ये सब थोड़ा खटक रहा है। जयेश वर्मा की 3 पीढ़ियां जयपुर गांव में ही रही हैं। उन्होंने बताया,
सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा, अब इसी में अब सोने पे सुहागा हो जाता, हम लोगों को रोजगार मिल जाता तो इसका मतलब हम सदउपयोग करते, जो चीज़ हमारे पास में है उसका उपयोग करते। अब खत्म होगा यही, जो भी लगा है ये खत्म होगा तो हम हमेशा इंतजार करते रहेंगे कहाँ से पैसा है।
वैसे तो इस गांव में दाखिल होने वाले रास्ते पर स्टेनलेस स्टील का एक बड़ा चमचमाता बस स्टॉप भी बन गया है, लेकिन जयपुर के पड़ोस में ऐसे दर्जनों गांव भी हैं जहां पिछले कुछ महीनों से जयपुर के विकास पर चर्चाएं हो रही हैं। कचहरिया या महगांव जैसे पड़ोसी गांवों में न तो ठीक से बिजली आती है और न ही उनके यहां किसी भी बैंक की एक अदद शाखा खुली है। कचहरिया गांव के भागीरथी पटेल ने हमसे खुलकर बात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोद ले लिए हैं जिस गांव को, वही बोलते हैं कि हाँ उसी गांव का विकास करेंगे शायद। यहां पर तो जैसे मतलब अंधेरा तो अंधेरा, मतलब वहां तो हर जगह मतलब ये सौर ऊर्जा लग गया है, रात को दिन जैसा लगता है साहब।
प्रधानमंत्री मोदी के लिए वाराणसी चुनाव क्षेत्र एक बड़ी चुनौती होता जा रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2017 में होने हैं और मोदी के रिपोर्ट कार्ड और उसमें मिले अंकों पर काफी कुछ टिका रहेगा। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी वाराणसी।
और अब वक्त हो गया है अखबारों की समीक्षा का। संदीप सोनी स्टूडियो में आ चुके हैं। संदीप, क्या कहते हैं आज के अखबार?
अनुराग, सबसे पहले जिक्र करते हैं द हिंदू अखबार का। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के तौर पर जयललिता ने 5वीं बार शपथ ली है, अखबार की ये पहली खबर है। खबर में इस बात का भी जिक्र है कि शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान पूरा नहीं बजाया गया। दैनिक भास्कर ने इस खबर पर लिखा है, जया की शुभ शपथ के लिए बजी छोटे राष्ट्रगान की धुन, क्यों? क्योंकि मुहूर्त बीता जा रहा था। आपको ध्यान होगा कई नेता शपथ ग्रहण को लेकर और अपने कार्यक्रमों को लेकर मुहूर्त का बहुत ध्यान रखते हैं, जयललिता उन्हीं में से एक हैं। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो अखबार ने अपने पहले पन्ने पर एक दूसरे को चूमती आयरलैंड की दो महिलाओं की तस्वीर छापी है अपने पहले पन्ने पर। सबसे ऊपर जिक्र है आयरलैंड का, जो जनमत संग्रह के आधार पर समलैंगिक शादी को वैधता देने वाला पहला देश बन गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की पहली खबर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी है खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज की मेजबानी भारत के मैदानों पर करना चाहता है, खबर में यह लिखा है। और यह भी लिखा है कि दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों के बीच अगले कुछ वर्षों में 6 क्रिकेट सीरीज होना है जिनका कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है। नवभारत टाइम्स की बात करें तो इसकी पहली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है, जो केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद विधानसभा का आपात सत्र बुला रहे हैं, जिससे केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों के मुद्दे पर जारी तनातनी जो अब तक चल रही थी और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। दैनिक जागरण में भी ये खबर छपी है कि सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी CVC और मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC की नियुक्ति के लिए जो कवायद शुरू हुई उसकी पहली बैठक बेनतीजा साबित हुई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति की बैठक में इस बारे में कोई सहमति नहीं बन पाई। जनसत्ता के पहले पन्ने पर एक विश्लेषण छपा है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बहाने भारतीय जनता पार्टी भूमिहारों को रिझाने की कोशिश कर रही है, जहां कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा आरक्षण के लिए गुर्जरों के आंदोलन की खबर कई अखबारों के पन्ने पर है। और हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में सवाल दागा है कि क्या किसी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से 15 अगस्त 1948 को पूछा कि अपनी हुकूमत के पहले साल आपने क्या किया। जिक्र है नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके का। और संपादकीय में यह भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी को इस देश ने प्रचंड बहुमत से उम्मीदों के साथ सत्ता सौंपी है, इन एक साल में ना करें उनका आकलन, और 5-4 साल बचे हैं, 4 साल का समय दें, लेकिन इन 4 साल में मोदी को जो करना है जल्दी करना होगा।
जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया समाचारों की समीक्षा के लिए। और अब खबरें खेलों की दुनिया से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल 8 का फाइनल मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स में एक से बढ़कर एक जगमगाते सितारे हैं और उनमें से कई तो अब शायद अपना बचा हुआ दमखम ही दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए चेन्नई के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज आशीष नेहरा, जो अभी तक 22 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, उनके दम पर चेन्नई दूसरे क्वालिफायर में बीते शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 3 विकेट से मात देने में कामयाब रही। हालांकि इसके लिए उसे ना को चने चबाने पड़े और केवल एक गेंद शेष रहते जीत नसीब हुई, जबकि लक्ष्य केवल 140 रनों का था। नेहरा ने केवल 28 रन देकर विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और दिनेश कार्तिक जैसे धुरंधर बल्लेबाजों के विकेट लिए। दरअसल पासा भी वहीं से पलटा। चेन्नई के ड्वेन ब्रावो को भी भूला नहीं जा सकता, जो अभी तक 24 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। आर अश्विन और मोहित शर्मा भी सधी गेंदबाजी कर रहे हैं। वास्तव में गेंदबाजी ही चेन्नई की ताकत है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही मुंबई के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा भी अपनी फॉर्म में हैं। उन्होंने अभी तक 22 विकेट अपने नाम किए हैं। अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने तो पहले क्वालिफायर में अपना जादू दिखा ही था। उन्होंने चेन्नई के खिलाफ लगातार 2 गेंदों पर धोनी और सुरेश रैना के विकेट लेकर स्टेडियम में दर्शकों के साथ चयनकर्ताओं का मन भी मोह लिया। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में शामिल होने का इनाम भी हाथों हाथ मिल गया। पोलार्ड ने तो कोलकाता के खिलाफ आखिरी ओवर में पीयूष चावला को जैसे परेशान किया और मैच जिताया, उसे कौन भुला सकता है। अब अगर बल्लेबाजी की बात करें तो चेन्नई को मैकुलम की कमी खल रही है, तो माइक हसी ने धोनी को निराश नहीं किया और बेंगलोर के खिलाफ 54 रन ठोक दिए। खुद कप्तान धोनी ने भले ही रन तो 26 बनाए, लेकिन टीम को संकट से निकाल लिया। सुरेश रैना, फैफ डु प्लेसिस और ड्वेन स्मिथ को अब फाइनल में अपना दमखम दिखाना होगा। वहीं मुंबई के लिए राहत की बात है कि अब पार्थिव पटेल भी रन बना रहे हैं। लैंडल सिमेंस, खुद रोहित शर्मा भी और पोलार्ड कभी भी मैच का नक्शा बदल सकते हैं। चेन्नई इससे पहले साल 2010 और 11 में चैंपियन रह चुकी है और साल 2013 में मुंबई से फाइनल में हारी थी। लिहाजा धोनी के धुरंधरों और रोहित शर्मा के शेरों के बीच जमकर चैंपियन बनने के लिए जंग होने की उम्मीद है। उधर दोहा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत के एल देवेंद्र सिंह, शिव थापा, मनीष कौशिक और मनोज कुमार ने स्वर्ण पदक, जबकि गौरव विधूड़ी ने रजत, मनदीप जांगड़ा तथा विकास कृष्ण ने कांस्य पदक जीता।
और अब बात उन खबरों की जिन पर होगी आज नजर।
राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद संघर्ष समिति ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हो रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दक्षिणी लेबनान से इसराइली सेना की वापसी के 15 साल पूरे होने के मौके पर हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला आज लेबनान में लोगों को संबोधित करने वाले हैं। रमादी शहर को इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से मुक्त कराने के लिए इराकी फौज शिया लड़ाकों के साथ आगे बढ़ रही है।
और एक बार फिर मुख्य समाचार संदीप सोनी से।
बीबीसी समाचार। यूरोपीय देश आयरलैंड में जनमत संग्रह में हिस्सा लेने वाले 62% से अधिक लोगों ने देश के संविधान में बदलाव करके समलैंगिक विवाहों को वैधानिक मान्यता देने के पक्ष में वोट दिया है। अमेरिका में कार के बोनट पर चढ़कर निहत्ते काले लोगों पर गोली चलाने वाले गोरे पुलिस वाले को अदालत ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस विवादास्पद विधेयक पर दस्तखत कर दिए हैं जिसमें रूसी अधिकारियों को देश के भीतर संचालित विदेशी संगठनों को काम करने से रोकने और उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। रूस से ही खबरें मिल रही हैं कि पूर्वी यूक्रेन में पृथकतावादियों के एक मुख्य कमांडर एलेक्जेई मोजगोवई की हत्या कर दी गई है। इराक में अधिकारियों का कहना है कि लगभग 3,000 इराकी लड़ाके इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से निपटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत के अधिकतर हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लू लगने की वजह से अब तक 223 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत के पहले अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। 8 बजे मुलाकात होगी नमस्कार भारत के दूसरे अंक में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।